खुदावन यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आज के हमारे पैगाम का टाइटल है दुख। आज हम सब मिलकर दुआ करेंगे और इसके बाद पैगाम का आगाज़ करेंगे। कादरे मुतलिक आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए और इस वक्त के लिए जो आपने हमें दिया। और खुदावन आपका शुक्र अदा करते हैं आपके कलाम के लिए जो आप हम सबको देने वाले हो। खुदावन आज आपका कलाम जितने भी लोग सुने, मैं दुआ करती हूँ कि वो लोग आपको कबूल करें, आप पर ईमान लाएं और आपके साथ चले, अपनी जिंदगियां आपके सुपुर्द करें। और आज जब वो आपका कलाम सुने तो आप उनके दिलों को और जहनों को अभी से तैयार करिए, ताकि जब वो आपका कलाम सुने तो उसे समझे, उसे कबूल करें और उस पर अमल करें, ताकि आपके नाम को जलाल मिले। खुदावन आप हम सबके साथ होइए और हमें बरकत दीजिए। ये दुआ हम अपने प्यारे मुनजी खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के हमारे पैगाम का टाइटल है दुख। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 11 बाब पहली आयत से 6 आयत तक। मत्ती की अंजील उसका 11 बाब पहली आयत से 6 आयत तक। और खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पुछावा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो, जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं, और मुर्दा जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए, आमीन। हमारी ज़िंदगी में वक्त और हालात हमेशा एक से नहीं रहते। कभी वक्त और हालात बहुत अच्छे होते हैं और कभी वक्त और हालात बहुत बुरे। और अक्सर जो फैसले हम माजी में लेते हैं उनके नतायज हमें आज हाल में भुगतने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। खुदा का कलाम कहता है कि इंसान जो बोता है वो वही काटेगा। और खुदा का कलाम ये भी कहता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी। अगर आज हम कुछ भी गलत करते हैं तो हमें उसके नतायज आज या कल भुगतने ही पड़ेंगे। जब हम मसीह को नहीं जानते थे, जब हम मसीह के कलाम को नहीं जानते थे, तो हमने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, हमने बहुत ज़्यादा गुनाह किए अपनी ज़िंदगी में और उनके नतायज भी भुगते। लेकिन अब जब हम मसीह को जानते हैं, मसीह के कलाम को जानते हैं, हम तौबा के बारे में जानते हैं, गुनाह के बारे में जानते हैं, तो हम खुदावंद से माफ़ी मांगते हैं, पूरी तरह से तौबा करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम वो सब कुछ करें जो खुदा को पसंद है। खुदा पर ईमान लाने के बाद और वो सब कुछ करने के बाद जो खुदा की निगाह में सही है, फिर भी कभी कभी हालात हमारी ज़िंदगियों में ऐसे आते हैं जहां हमें दुख सहना पड़ता है। ये हवाला जो हमने पढ़ा है ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में है जो कि कैद में है और दुख उठा रहा है। हम सब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जानते हैं। हमारे खुदावन यीशु मसीह ने इनके बारे में कहा कि ये एक अजीम नबी है और ये वही शख्स है जिसने खुदावन यीशु मसीह के लिए राह तैयार की। इन्होंने ही खुदावन यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। ये खुदा का बंदा था जिसने पूरे दिल से और पूरी जान से खुदा की खिदमत की। ये रूहुल कुदस से भरपूर था और इसने वो सब कुछ किया जो खुदा ने इसे करने के लिए कहा था। ये किसी इंसान से नहीं डरता था बल्कि इसका ईमान खुदा पर था। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद में है और दुख उठा रहा है। हमारे खुदावन यीशु मसीह जो कि हमारे नजात दहिंदा हैं, हमें मुहैया करने वाले खुदा हैं, हमारी हिफाजत करने वाले खुदा हैं, हमें नजात देने वाले खुदा हैं, हमें शिफा देने वाले खुदा हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। बड़े से बड़ा मौजज़ा, अजीम से अजीम मौजज़ा हमारे खुदावन यीशु मसीह कर सकते हैं और करते हैं। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 11 बाब दूसरी और तीसरी आयत। मत्ती की अंजील 11 बाब दूसरी और तीसरी आयत। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शुगिर्दों की मार्फत उसे पिछावा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। आमीन। जो सवाल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जहन में था वो ये था कि खुदावन अगर आप मेरे खुदावन हो, अगर आप मेरे निजात दहिंदा हो, अगर आप मेरी हिफाजत करने वाले खुदा हो, अगर आप मुझे शिफा देने वाले खुदा हो, अगर आप मुझे निजात देने वाले खुदा हो, तो मैं यहाँ पे क्यों इस कैद में दुख उठा रहा हूँ। अक्सर औकात हम भी ऐसे ही सवाल खुदा से पूछते हैं कि खुदावन आप मेरे खुदावन हो, आप मेरे निजात दहिंदा हो, आप मुझे मुहैया करने वाले खुदा हो, आप मेरी हिफाजत करने वाले खुदा हो, तो मैं क्यों दुख उठा रहा हूँ। हमारा ईमान खुदा पे है, हम खुदा पे भरोसा करते हैं और खुदा के सारे हुक्मों को अमल में लाते हैं, खुदा के सारे हुक्मों पर अमल करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम दुख उठाते हैं। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील 11 बाब 4 आयत से लेकर 6 आयत तक। मत्ती की अंजील उसका 11 बाब 4 आयत से लेकर 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं, और मुर्दा जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। आमीन। खुदावन यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। अब हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद में क्यों था। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 14 बाब पहली आयत से 12 आयत तक। मत्ती की अंजील उसका 14 बाब पहली आयत से 12 आयत तक। और खुदा के कलाम में लिखा है, और उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने खादिमों से कहा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मोजज़े जाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़वा कर बांधा और कैद खाना में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसका रखना तुझे रवा नहीं, और वो हरचंद उसे कत्ल करना चाहता था मगर आम लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। लेकिन जब हेरोदेस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाचकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उसे वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। उसने अपनी माँ के सिखाने से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यही मंगवा दे। बादशाह गमगीन हुआ मगर अपनी कस्मों और मेहमानों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेजकर कैद खाना में यूहन्ना का सर कटवा दिया और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दे दिया गया, और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई, और उसके शगिर्दों ने आकर लाश उठाई और उसे दफन कर दिया और जाकर यीशु को खबर दी। आमीन। खुदावन यीशु मसीह जानते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनका कज़न भाई कैद में है, लेकिन फिर भी खुदावन यीशु ने उन्हें आज़ाद करने के लिए कुछ नहीं किया और आखिर में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काट दिया गया। हमारे जहन में ये सवाल आ सकता है कि खुदावन यीशु ने इसको क्यों नहीं बचाया, खुदावन यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्यों नहीं बचाया। विश्वासी होने के नाते, ईमानदार होने के नाते, हमें फकत मसीह पर ईमान ही नहीं लाना है बल्कि मसीह की खातिर हमें दुख भी उठाना है, दुख भी सहना है। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे फिलिपियों उसका पहला बाप और 29 आयत। फिलिपियों उसका पहला बाप और 29 आयत। क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि न फकत उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कुछ भी गलत नहीं किया था, वो खुदा के साथ चले और उन्होंने बादशाह से कहा कि जो आप कर रहे हो वो रवा नहीं है, जो आप कर रहे हो वो खुदा की निगाह में सही नहीं है। हम भी खुदा के पीछे चलते हैं और हर कोशिश करते हैं कि खुदा को हम पसंद आए। हम हदिया और दाय हकी देते हैं, दुआ करते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं और खुदा के कलाम के बारे में दूसरों को भी बताते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम दुख उठाते हैं। खुदावन यीशु ने कहा कि अगर कभी वो हमें हमारी मदद ना करें, अगर कभी वो हमारी दुआओं का जवाब ना दें, अगर कभी वो हमें शिफा ना दें, अगर कभी वो हमें मुहैया ना करें, हमारी हिफाजत ना करें, हमें नजात ना दें या कभी हमें बचाए ना, तो भी हमें उनसे नाराज़ नहीं होना है, उन पर गुस्सा नहीं करना है। अगर ये सब कुछ कभी हमारी ज़िंदगी में नहीं होता तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि खुदावन हमसे मोहब्बत नहीं करते, खुदावन को हमारी परवाह या ख्याल नहीं है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि खुदा हमें बचाना नहीं चाहते, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। फिलहाल इस वक्त हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते। कभी कभी खुदावन अपना मकसद हमारी ज़िंदगियों से पूरा कर रहे होते हैं। हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, हम खुदा के हाथ की कारीगरी हैं, तो हमें लाजमी है कि हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें। हमें खुदावन से यही कहना चाहिए कि खुदावन मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी पूरी हो। हमें ऐसे लोग हरगिज़ नहीं होना चाहिए जो कि गलत करके या गुनाह करके उसकी सज़ा पाए। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला पत्रस उसका 4:15-19 पहला पत्रस उसका 4:15 से हम 19 आयत तक पढ़ेंगे। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख ना पाए, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते, और जब रास्तबाज ही मुश्किल से नजात पाएगा तो बेदीन और गुनेगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपने जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। आमीन। हमें ये समझना चाहिए कि खुदावन यीशु मसीह ने भी बहुत दुख उठाए, सारे रसूलों ने दुख उठाए, पौलुस रसूल ने सबसे ज़्यादा दुख उठाए। उन्होंने भूख सही, उन्होंने प्यास सही, रहने के लिए उनके पास कोई घर नहीं था और उन्होंने बहुत मेहनत और मशक्क़त की, उन्होंने बहुत तकलीफ़ें और दुख सहे, लेकिन फिर भी ये पौलुस वही है जिसने कहा कि खुदावन का फजल मेरे लिए काफ़ी है। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे 2 Corinthians 6:3-10 हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians 6:3-10 और खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए, बल्कि खुदा के खादिमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियाज से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, परहेजगारी से, इल्म से, तहम्मल से, मेहरबानी से, रूहुल कुदस से, बेरिया मोहब्बत से, कलाम हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से जो दाहें बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेकनामी के वसीला से, वो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं फिर भी सच्चे हैं, गुमनामों की मानिद हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानिद हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानिद हैं, मगर जान से मारे नहीं जाते। गमगीनों की मानिद हैं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। कंगालों की मानिद हैं, मगर बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं। नदानों की मानिद हैं, तो भी सब कुछ रखते हैं। आमीन। हमारा ध्यान जो है और हमारी निगाहें जो हैं वो सिर्फ खुदा पे और खुदा की बादशाही पे होनी चाहिए, और हमारा ईमान खुदा पर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि अगर हमारी ज़िंदगी में दुख और परेशानियाँ तकलीफ़ें आएं भी, तो हमारा ईमान ये हो कि खुदावन हमें अपना फ़ज़ल अता करेंगे। तो अगर हम में से कोई दुख उठाता है या दुख सहता है, तो खुदा का कलाम कहता है कि उस शख्स को दुआ करनी चाहिए। लेकिन अगर कभी खुदा हमारी दुआ का जवाब ना दे, तो हमें खुदा से नाराज़ नहीं होना है, खुदा पर गुस्सा नहीं करना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हमें गिरना नहीं है, बल्कि हमें खुदा पर भरोसा रखना है कि खुदावन हमें उस दुख को और उस परेशानी को सहने के लिए अपना फ़ज़ल अता करेंगे। और यही जानते हुए और यही मानते हुए हमें खुदा पर ईमान रखना है, और कि खुदा हमें शिफा देंगे, खुदा हमें बचाएंगे, खुदा हमें निजात देंगे और खुदा हमें शिफा बख्शेंगे। हमारे खुदावन बहुत अच्छे हैं, वो हमारे बारे में जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमारे खुदावन हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, वो जानते हैं कि हम कितना सह सकते हैं। तो दुख के वक्तों में भी हमें खुदावन से नाराज़ नहीं होना है, बल्कि यही दुआ करनी है खुदावन से कि खुदावन हमें अपना फ़ज़ल अता करें और हमारी मदद करें कि हम उन वक्तों में भी खुदावन से नाराज़ ना हो और खुदावन पर गुस्सा ना करें, हम अपना ईमान ना छोड़ें, बल्कि खुदावन के साथ ईमानदारी और वफादारी से चलते रहे। खुदा के बंदा अय्यूब की एक बहुत अजीम गवाही है, उन्होंने एक बात कही है, और उन्होंने ये कहा कि अगर खुदावन मुझे मार भी दें, अगर खुदावन मुझे जान से भी मार दें, तो मैं खुदा पर उम्मीद रखूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएँ और दुख ना पाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि खुदावन ने दिया और खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। और आखिर में हम खुदा के कलाम में से ईमान के बारे में एक और अजीम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हबाकूक की किताब उसका 3:17-18 से। हबाकूक की किताब उसका 3:17-18 तक लिखा है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवीलों में मुआशी ना हो, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूँगा और अपनी निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होंगा। आमीन। हमारी ज़िंदगी में दुख आते जाते हैं, अच्छे वक्त और अच्छे हालात आते जाते हैं। कभी खुदावन हमारी दुआओं का जवाब देते हैं और कभी वो इस चीज़ को चुनते हैं कि वो हमारी दुआओं का जवाब ना दें। लेकिन बहुत ख़ास बात यह है कि चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमें खुदावन से नाराज़ नहीं होना है, खुदा पर गुस्सा नहीं करना है, शिकायत नहीं करनी है, बड़बड़ाना नहीं है, अपना ईमान नहीं खोना है, बल्कि खुदावन पर उम्मीद रखनी है, दुआ करते रहना है और खुदावन पर भरोसा रखना है। और अभी जैसे कि हमने अय्यूब के बारे में पढ़ा और हबाकूक उसका 3:17-18 तक हमने पढ़ा, तो ये लोगों का ईमान इतना ज़्यादा था खुदा पर। और पौलुस रसूल के बारे में भी हमने देखा कि उसका ईमान भी खुदा पर कितना था कि उसने कहा कि खुदा का फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी है। तो हमारे लिए भी खुदा का फ़ज़ल काफ़ी है। आमीन। यही आज का पैगाम है, आए हम सब मिलकर दुआ करेंगे आज के पैगाम के लिए। कादर मुतलिक आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज के आपके कलाम के लिए जो आपने हमें बख्शा। हमारी मदद करिए खुदावन के हम आपके कलाम को कबूल करें और इस पर अमल करें ताकि आपके नाम को जलाल मिले। हमारी मदद करिए खुदावन कि हम आपके अजीम खादिमों से सीखें खुदावन, जैसे कि अय्यूब ने कहा कि अगर खुदावन मुझे मार भी दें, मेरी जान भी ले ले तो मैं खुदा पर उम्मीद रखूंगा। जैसे अय्यूब ने कहा कि क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं, जैसे अय्यूब ने कहा कि खुदावन ने दिया और खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। खुदावन हमें भी ऐसा ईमान अता करे कि हम भी कह सकें पौलुस की तरह के खुदावन का फजल मेरे लिए काफ़ी है। खुदावन आप हमेशा हमारे साथ रहिए, हमारी मदद करिए खुदावन कि हम आपकी हजूरी को महसूस करें और अपनी जिंदगियों को आपके सपुर्द करें। आप हमारे साथ होइए और हमें बरकत दीजिए। ये दुआ हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।